समय सार लेक्चर नंबर 687 ओम नमः सिद्धेव्य ओम नमः सिद्धेव्य ओम नमः सिद्धेव्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो अजायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दित्व संवसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पते वोच्छामि समयपाहुर मिणमो सुदकेवलीभणिदम्।
यह कुंद कुंदाचार्य भगवान का समय सार है और इस समय सार के सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के गाथा नंबर 314 और 315 हम देख रहे हैं। और यह जो प्रवचन रत्नाकर भाग 9 पृष्ठ क्रमांक 58 इसमें दो पैराग्राफ तो हमने पढ़ लिए हैं, थर्ड पैराग्राफ से चालू करेंगे। उसके पहले दूसरा पैराग्राफ फिर से दोबारा पढ़ेंगे हम। शास्त्रमा लेख छे के नवतत्वना नाम पन जानता नथी एवा अड्ढी द्वी बाहर असंख्य पशु छे के जेवो समकीति श्रावकना पंचम गुणस्थान नी भूमिका मा आरूढ़ छे। जेने जाननार ने जाइनो तेने बधु जाइनु आ चैतन्य स्वरूप जानवा वालो ते हूँ आ राग ते हूँ नहीं एम जेने ज्ञान मा अनुभव्यूं ते ज्ञायक छे ज्ञानी छे। भाई वीतराग परमेश्वरे कहेलू स्वरूप ते आ छे भाग्य होय तो ए सांभळवाय मळे। ये बहुत ही अच्छा पैराग्राफ था इसलिए मैंने सुना सोचा कि दोबारा हम पढ़ लेवे। देखो एक बात ध्यान रखिएगा, ये पंचम गुणस्थान वर्ती जो मत्स्य आदि जो है उनमें से कई तो सम्मूर्छन जीव है और हम जानते हैं कि सम्मूर्छन जीव नपुंसक ही होते हैं। ख्याल में सम्मूर्छन यानी जिनके जन्म के लिए निमित्त रूप से माता पिता की आवश्यकता नहीं है, वातावरण में ही वे पैदा होते हैं ऐसे जीव, वो भी पंचेंद्रिय हैं। अरे मनुष्य भी सम्मूर्छन हो सकता है, ख्याल में आए।
ये अडी द्वीप के अंदर के जो पशु है क्या वे पांचवे गुणस्थानवर्ती नहीं हो सकते? ये अडी द्वीप ना बाहर केम लख्यो? हाँ हो सकते। हाँ अब अढ़ी द्वीप के ढाई द्वीप के बाहर जो कहे हैं वो कहाँ कहाँ के हो गए? हाँ देखो अढ़ी द्वीप के बाहर तो असंख्यात द्वीप समुद्र है, तो असंख्यात समुद्रों में तो कोई जीव नहीं है, लास्ट वाला जो स्वयं भ्रमण है उसमें है। असंख्यात द्वीपों में तो जघन्य भोगभूमि है, वहाँ तिर्यंच भी है सम्यक दृष्टि भी है परंतु चौथे के ऊपर नहीं जाएंगे। तो लास्ट जो स्वयंभू रमण समुद्र है उसके पहले वाला स्वयंभू रमण द्वीप है, उसके सेंटर में जो स्वयं प्रभ पर्वत है यानी स्वयंभू रमण द्वीप का बाहरी हिस्सा, उसमें भी पशु है। ये अकेले मत्स्य की बात नहीं, अन्य भी वहाँ पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय पशु है और वो भी ये पंचम गुणस्थानवर्ती हो सकते हैं। ये बात बताना चाहते हैं। स्वयंभू रमण समुद्र में तो है ही असंख्यात, वहां भी वो तो जलचर है ना वहां पर, परंतु वहां थलचर भी है, नभचर भी होगे। नभचर किसको कहते हैं? नभचर किसको कहते हैं? पक्षी होंगे।
तुम्हें क्या बोल ले?
देखो स्वामी जी कहते हैं ना, चकली ने पन सम्यक दर्शन था, तो चकली तो यहाँ है अपने सामने, हमने इधर उधर,
यहाँ तो है ही है ये सारे, क्योंकि कर्म भूमि के भी तीरंज है ना, भोग भूमि में चौथे के ऊपर नहीं जाते, ये बात ख्याल में रख। भोग भूमि का मनुष्य हो या तीरंज हो, उसका चौथा गुणस्थान तक ही जा सकते, उसके ऊपर नहीं। ये विषय नहीं था यहाँ पर, ये अड़ियल द्वीप की बात आ गई इसके बताए।
अब आगे बढ़ेंगे। वही स्वपर्णा विभाग दर्शन थी, विभाग दर्शन का अर्थ हमने देखा था, भेद दर्शन थी दर्शक छे, यानी भेद किसमें किया? श्रद्धा में, स्व और पर के। शू की तू स्व नाम एक शुद्ध चिदगन प्रभु आत्मा, अने पर नाम, नाम का अर्थ इसका अर्थ ऐसा है, पर का अर्थ ऐसा है, ऐसा लेना। पर नाम पुण्य पाप आदि विभाव ए बेना भेद दर्शन थी जीव दर्शक छे, सम्यक दृष्टि छे। आ देवगुरु शास्त्र ने अने नवतत्व ने बार थी एटले विकल्प रूप माने, माटे जीव सम्यक दृष्टि छे एम नहीं, पन राग थी भिन्न हूँ चिदानंद घन स्वामी आत्मा छू, एम राग ने आत्मा ना विभाग दर्शन थी जीव दर्शक नाम सम्यक दृष्टि छे, आवो मारक छे भाई। वीतराग नो आ शिवरा नो मार्ग छे बापू, प्रभु नो मार्ग छे शूरा नो, नहीं कायर नो काम जो ने। आ तो वीर नो मार्ग प्रभु, कायर अर्थात राग ना रसिया नो आमा काम नथी, रागनी जेने रुचि छे, राग नो करता थई जे परिणमे छे, एवा रागी जीवो ने शास्त्र मां नपुसक कह्या छे। केम के नपुसक ने जेम पुत्र न थाय, तेम राग ने एटले शुभ भाव, राग ने पोताने पोतानो माननार ने धर्मनी पर्याय पाकती नथी। वड़ी स्वपर्णी विभाग परिणती थी संयत छे। पहले दर्शक की बात ली, अभी कह रहे हैं विभाग परिणति थी संयत छे। राग परिणति अने ज्ञान परिणति बन्ने भिन्न छे। राग परिणति प्रकृति नो स्वभाव छे अने ज्ञान परिणति ज्ञान स्वभाव रूप छे, बन्ने भिन्न छे। त्या राग रहित निर्मल ज्ञान परिणति ते मारी चीज छे, अने राग परिणति ते मारी चीज नथी। आवी स्वपर्णी विभाग परिणति थी जीव संयत छे। लो आने संयत नाम मुनि कहवाय छे। नाम का अर्थ एटले भी हो सकता है क्या? है नाम का अर्थ क्या है एक्चुअली? संयत नाम चलो चलो स्वामी जी विशेष रूप से इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा संयत नाम एटले संयत, अर्थात संयत एटले मुनि कहेवामां आवे छे। मात्र नग्न दिगंबर होय ने बहार मां वहां महाव्रतादि पाड़े, माटे मुनि छे एम नहीं, पण राग ने ज्ञान नी विभाग परिणति थी जीव संयत नाम मुनि छे। आम त्रण बोल कीधा हवे कहे छे, अने त्यारे ज परना ने पोताना एकत्व नो अध्यास नहीं करवाथी अकर्ता छे। जो ज्यां सुधी स्वपर्णा एकत्व नो अध्यास हतो ત્યાં સુધી જીવ અજ્ઞાની અને કરતા હતો, પણ સ્વપરના એકત્વનો અધ્યાસ દૂર થતા તે જ્ઞાની થયો થકો અકર્તા છે. ચોથા ગુણસ્થાને આત્માનું ભાન થઈને જ્યાં સમ્યક દર્શન થયું ત્યાં તે રાગનો અકર્તા થઈ જાય છે. રાગ ભલે હો પણ તેનો તે અકર્તા નામ જ્ઞાતા જ છે. લ્યો, આનું નામ ધર્મ ને મોક્ષનો માર્ગ છે. યહાં નામ જો હૈ ઉસકા અર્થ અલગ હૈ, વો અર્થ જ મત લેના. યાને ઇસકો ધર્મ ઓર ધર્મ મોક્ષ કા માર્ગ કહેતે હૈ. જ્યાં સુધી અભી ભાવાર્થ પડેંગે હમ, જ્યાં સુધી આ આત્મા પોતાના અને પરના સ્વલક્ષણોને જાણતો નથી ત્યાં સુધી તે ભેદ જ્ઞાનના અભાવને લીધે કર્મ પ્રકૃતિના ઉદયને પોતાનો સમજી પરણમે છે. એ રીતે મિથ્યાદૃષ્ટિ અજ્ઞાની અસંયમી થઈને એટલે કરતા થઈને કર્મનો બંધ કરે છે. જો આત્માનું લક્ષણ જ્ઞાન છે અને કર્મ પ્રકૃતિનું લક્ષણ રાગ અને બંધ છે. રાગ શુભ હો કે અશુભ હો તે પ્રકૃતિનો સ્વભાવ છે, જીવનો નહીં. જીવનો તો એક જ્ઞાન સ્વભાવ છે. આમ બંનેના સ્વલક્ષણોને ભિન્ન ભિન્ન જાણતો નથી ત્યાં સુધી જીવને ભેદ જ્ઞાનનો અભાવ છે, અને ત્યાં સુધી તે કર્મ પ્રકૃતિના ઉદયને પોતાનો સમજી પરિણમે છે. એ મિથ્યાદૃષ્ટિના ગાના ગાય છે. આહા, કર્મ પ્રકૃતિના ઉદયમાં જે ઝટ જોડાઈ જાય છે આ પ્રમાણે ભેદ જ્ઞાનના અભાવે જીવ પ્રકૃતિના સ્વભાવે રાગાદિપણે પુણ્ય પાપપણે પરિણમે છે, અને એ રીતે મિથ્યાદૃષ્ટિ અજ્ઞાની અને અસંયમી થયો થકો અકર્તા થઈને અસંયમી થયો થકો કરતા થઈને કર્મનો બંધ કરે છે. તો પછી જ્ઞાનીને પણ રાગ થતો જોઈએ છીએ ને? હા, જ્ઞાનીને રાગ થતો જ હોય છે, પણ એની જ્ઞાન પરિણતિથી એ ભિન્ન પડી ગયો હોય છે. જ્ઞાની એને પોતાથી ભિન્નપણે જાણે છે, જેમ ઘઉં ને કાકરા ભિન્ન છે એમ અજ્ઞાની બેને એકમેક કરે છે. પ્રકૃતિના સ્વભાવને પોતાનું સ્વ સમજીને પરિણમે છે, તેથી તે મિથ્યાદૃષ્ટિ અજ્ઞાની અસંયમી થઈને કરતા થઈને કર્મ બંધ કરે છે. અને જ્યારે આત્માને ભેદ જ્ઞાન થાય છે ત્યારે તે કરતા થતો નથી, તેથી કર્મનો બંધ કરતો નથી, જ્ઞાતા દ્રષ્ટાપણે પરિણમે છે. આહા, હું તો જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવી પ્રભુ આત્મા છું, અને આ રાગ છે એ તો પ્રકૃતિનો સ્વભાવ છે, અને તે મારાથી તદ્દન ભિન્ન છે. જ્યારે આવું જીવને ભેદ જ્ઞાન થાય છે ત્યારે તે જ્ઞાની થયો થકો રાગનો કરતા થતો નથી. જ્ઞાનીને રાગ થતો હોય છે, પણ રાગનું પરિણમન મારું સ્વ છે એમ જ્ઞાની સ્વીકારતા નથી. જ્ઞાનીની દ્રષ્ટિએ રાગને પોતાના સ્વપને સ્વીકારતી નથી. જ્ઞાનીને રાગનું સ્વામિત્વ નથી, રાગનું પરિણમન છે એ અપેક્ષાએ તેને શાસ્ત્રમાં કરતા કયો છે. અભી દેખો, યહાં થોડા સા વિષય ચેન્જ હૈ, લેકિન બાત એસી હૈ કે જો દ્રવ્યલિંગી મુનિ હૈ ઉનકી ક્યા ભૂલ હોતી હૈ કે ઉનકી દ્રષ્ટિ રાગ કો સ્વપને સ્વીકારતી હૈ, હા, ઓર ઉનકો રાગ કા સ્વામિત્વ હૈ ઓર રાગ કા પરિણમન હૈ ઓર વો મુજે લાભદાયક હૈ એસી ઉનકી માન્યતા હૈ, ઇસલિયે વો સમ્યક દર્શન નહીં કર સકતે. યહાં તો સમ્યક દ્રષ્ટિ કી બાત બતાઈ હૈ ઓર વો મિથ્યાત્વ ક્યું રહે હૈ ઓર યે સમ્યક્ત્વ ક્યું હુએ હૈ, સમ્યક્ત્વ હોને કે બાદ ઉનકી કોનસી માન્યતા કન્ટિન્યુ ચલ રહી હૈ, ઇસ બાત કા યહાં વિવેચન કિયા. और नीचे से दूसरी तीसरी लाइन पर ज्ञानी राग पोतानू करवा लायक कर्तव्य छे ये मानता नथी और वो अपने कर्तव्य समझते हैं ये अपेक्षा ने तेने एटले ज्ञानी ने अकर्ता कहो छे समझाणो काई राग ने पोतानो मानी ने परिणमे ते मिथ्यात्व छे अने मिथ्यात्व छे तेज संसार छे जारे भेद ज्ञान थाय छे त्यारे ज्ञानी थयो तको राग नो करता थतो नथी तेथी जीव कर्म बंद करतो नथी ज्ञाता दृष्टा पणे परिणमे छे सम्यक दर्शन थी मांडी ने मुनि दिशा पर्यंत ते जाणवा देखवा रूपे परिणमे छे व्यवहार रत्नत्रय नो राग आवे पण तेनो ते करता थतो नथी भाई वितरागी धर्म वितराग भाव थी ज प्रकट थाय छे राग थी नहीं राग पने परणमु ए कई धर्म नथी ज्ञानी ने राग आवे पण ते राग नो करता थतो नथी ज्ञाता दृष्टा ज रहे छे आवी सूक्ष्म वात छे अभी हम दोबारा कलश पढ़ेंगे 196
हाँ जी तेवीज रीते भोक्तापणु पण आत्मानो स्वभाव नथी एवा अर्थनो आगळनी गाथानी सूचना रूप श्लोक हवे कहे छे
अनुष्ठुप
भोक्तृत्वं न स्वभावोस्य स्मृतकर्तृत्ववञ्चित अज्ञानादेव भोक्तायं तदभावाद वेदक तद अभावात अवेदकं श्लोकार्थ देखते हैं कर्तृत्ववत कर्तापनानी जेम अभी कर्तापना के ऊपर बता दिया भोक्तृत्वम अस्य चित्तः स्वभावः स्मृतः न जैसे इसका कर्तृत्व स्वभाव नहीं है वैसे ही भोक्तृत्व भी इसका स्वभाव नहीं है किसका चैतन्य का तो कर्तापनानी जेम भोक्तापणुपणा चैतन्य नो एटले चित्त स्वरूप आत्मानो स्वभाव कहो नथी ये चित्त स्वरूप आत्मा कहाँ लिखा है भोक्तृत्वम अस्य चित्तः स्वभावः स्मृतः न चित्त है ना वैसे चित्त वो षष्ठी विभक्ति हुई चित्त का स्वभाव नहीं है अज्ञानात एव अयम भोक्ता अज्ञान थीज ते भोक्ता छे पहला क्या कहा था अज्ञान से ही वो करता है ऐसे ही अज्ञान से ही वो भोक्ता है तद अभावात ओ वेद कहा अज्ञान नो अभाव तथा तद यानी अज्ञान के अभाव होने पर अभोक्ता छे यानी जब तक अज्ञान है तब तक यह भोक्ता बना बढ़ा है और अज्ञान के दूर होने पर अभोक्ता हो जाता है जैसे वहां कर्ता और अकर्ता बताया था वैसे ही भोक्ता और अभोक्ता की बात यहाँ आती है ये आगामी गाथा के सूचना रूप जो ये यहाँ कलश लिखा है उसका भी प्रवचन देखते हैं
पेज नंबर 60 पर दोबारा आइएगा यहाँ लिखते एवीज रीते यानी अभी तक हमने जो कर्तापना जो बताया एवीज रीते भोक्तापणो पण आत्मानो स्वभाव नथी एवा अर्थनो आगळनी गाथानी सूचना रूप श्लोक कहे छे कर्तृत्ववत कर्तापनानी जेम भोक्तृत्वम अस्य चितः स्वभावः स्मृतः न भोक्तापणो पण आ चैतन्य नो एटले चित्त स्वरूप आत्मानो स्वभाव कहो नथी यानी आत्मा अकर्ता है अभोक्ता है बस आहा शुभाशुभ राग नु कर्तापनु जेम चित्त स्वरूप भगवान आत्मा नो स्वभाव नथी तेम शुभाशुभ राग नु भोक्तापनु पण जीव नो स्वभाव भगवान गणधरी देवे कहो नथी आ विषय भोग मा के भगवान ना दर्शनादि करता जे हरख नो भाव थाय तेने भोक्ता ज्ञानी थतो नथी केम केम के इंद्रियना विषय के हरखना रागनु कल्पनाना सुखनु भोगवुं ते आत्मानो स्वभाव नथी राग ने करे के भोगवे एवो आत्मानो कोई स्वभाव वा गुण वा शक्ति नथी जो समकिती चक्रवर्ती ने 96,000 राणियों होय छे रोज ते नवी नवी राणियों परणे छे તેને તત્વ વિશે રાગ પણ તે કાળે થતો હોય છે, તો પણ તે રાગના ભોગતાપનાનું જે વેદન છે તે હું નહીં એમ તે માને છે. શું કીધું? આહા, આ જેટલું નિરાકળ આનંદનું વેદન છે તે મારી ચીજ છે, પણ રાગનું ભોગવવું તે મારું સ્વરૂપ નથી એમ ધર્મી માને છે. હવે અજ્ઞાનીની આ કેમ બેસે? પરંતુ ભાઈ, આત્મા જેમ રાગનો કરતા ન થાય તેમ રાગનો ભોગતાય ન થાય, એવો જ એનો સ્વભાવ છે. એનો એટલે રાગનો કે દ્વેષનો? હા બેન, આત્માનો ક્યા કહા, એવો એનો એને આત્માનો સ્વભાવ નથી. શું કીધું? હા, તે રાગનો ભોગતાય નહીં થાય એવો જ એનો સ્વભાવ છે, બરાબર. અને સ્વભાવમાં રત એવા જ્ઞાનીને વિષયોમાં રાગાદીમાં સુખબુદ્ધિ હોતી જ નથી, તેથી તે ભોગતા થતો નથી. લ્યો, આવી ઝીણી વાત. હવે કહે છે, અજ્ઞાનાત એવ અયમ ભોગતા, અજ્ઞાનથી જ તે ભોગતા છે. તદ અભાવાત અવેદક, અજ્ઞાનનો અભાવ થતા અભોગતા છે. રાગ અને જ્ઞાનનું જ્યાં સુધી ભેદ જ્ઞાન નથી ત્યાં સુધી અજ્ઞાનથી જ જીવ ભોગતા છે. જ્યારે રાગ અને આત્માનું ભેદ જ્ઞાન થાય છે ત્યારે તે રાગ અને હરખ શોકના ભાવનો ભોગતા થતો નથી. લોકોને બહારથી લાગે કે તે ભોગવે છે, પણ વાસ્તવમાં જ્ઞાની રાગ કે હરખ શોકના ભાવને ભોગવતો નથી. કેમ કે હું ભોગવું એવો અભિપ્રાય તેને ક્યાં છે? એને તો એ વિશ્વ અને તત્સંબંધી હરખ શોકના ભાવ એ બધું ઝેર સમાન છે. આહા, જળ ઇન્દ્રિયો, ભાવેન્દ્રિયો અને વિષયો એ બધાથી અધિક પોતાનો જ્ઞાન સ્વભાવ જેને સ્વપ્ને અંદર પ્રતિભાસ્યો છે તે રાગ અને હરખ શોકના ભાવને કેમ ભોગવે? આનંદનો ભંડાર એવા જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવ એની જે પરમાત્મા દ્રવ્યથી જેને પ્રેમ બાંધો તે હવે બીજે વિષયાદિમાં કેમ રતિ કરે, રતિ કેમ કરે, ન જ કરે? આ પ્રમાણે અજ્ઞાનનો ભાવ થતા અભાવ થતા જીવ અભોગતા છે. અભોગતાપનું આત્માનો સ્વભાવ છે અને તે સ્વભાવને અનુસરનાર જ્ઞાની અભોગતા છે, આવી વાત છે.
દેખો યે ઇસ ગાથા મેં તો બહોત બહોત હી યાની માર્મિક રીતિ સે સબ બતાયા હૈ. દેખો, આત્મા તો હૈ અમૂર્તિક હૈ, અનાદિ સે અમૂર્તિક હૈ, પરંતુ કર્મો સે બંધા હુઆ હૈ, યાની કભી કર્મો સે મુક્ત તો થા હી નહીં. તો યે તો જડ કર્મ આત્મા સે એસે બંધે કે આત્મા રૂપી જૈસા હો ગયા. સમ્યક તો માર્ગણા મેં ઉસકો કથનચિત રૂપી ભી કહે દિયા હૈ. સંસારી જીવ કો રૂપી કહા ક્યો? ક્યોંકિ વો કભી ભી કર્મ સે મુક્ત પાયા હી નહીં જાતા હૈ. અબ ઉસી સમય ઇસકે અભી હમ અપની બાત કરેંગે. યહાં શરીર કે પરમાણુ ભી એક ક્ષેત્રાવગાહ રૂપ સે વિદ્યમાન હૈ. તો જો શરીર કે પરમાણુઓં કી યહાં અવસ્થાએં હોતી હૈ, જૈસે ઉષ્ણ હો ગઈ યા શીત હો ગઈ યા જો કુછ હોતી હૈ, તો અપને કો એસા હોતા હૈ ના, મેં ગરમ હો ગયા, મેં શીત હો ગયા, યાની ઉસકે શરીર કે સાથ એકત્વ ઉદ્ધિ હૈ. તો બહોત ઓર જ્યાદા અધિક પદ્ધતિ સે ચલેગા ઉસકો, ક્યોંકિ શરીર કે જો પરમાણુઓં કી વહાં જો અવસ્થાએં પલટતી હૈ વો તો ઉસકો, ક્યોંકિ ક્ષેત્ર એક હી હૈ વહાં પર, તો ઉસકો ઉસકા જ્ઞાન હોતા હૈ. ઓર જબ તક ઉસકા લક્ષણ કા પતા નહીં કે યે તો મૂર્તિક કા લક્ષણ હૈ ઓર યે મેરા લક્ષણ ભિન્ન હૈ, ઇસી ઇસી જો યહી ઇસી ક્ષેત્ર મેં મેરા લક્ષણ તો જ્ઞાન હૈ ઓર શરીર કા ઉષ્ણ શીત આદિ અવસ્થા તો શરીર કી હૈ, વો તો શરીર કા લક્ષણ હૈ. એસા ઉસકા લક્ષણ જાનેંગે તો હમ ઉસસે ભેદ જ્ઞાન કર સકતે, યાની જાનને વાલા મેં હું ઓર યે ઉષ્ણ શીત વાલા જો હૈ કુછ નિર્દોષ, જો કોઈ ભૂખ લગતી હૈ અંદર, જો કોઈ શરીર સંબંધી જો કોઈ અવસ્થા હોતી ઉસકા તો પતા ચલતા હૈ. અબ વૈસે હી બાત કર્મ પર ઘટાના ભી, એક કર્મ કા પૂરા સ્કંદ યહાં પર હૈ, ઉસી ક્ષેત્ર મેં જહાં મેં સ્વયં હું જીવ. અબ યે જો કર્મ સ્કંદ કે જો ઉદય રૂપ જો પરમાણુ હૈ ઉસમે યે ક્રોધ માન માયા લોભ આદિ ઉસકે યે સ્વભાવ પ્રકૃતિ સ્વભાવ કહા ના બારંબાર, તો જબ ઉસકા પ્રકૃતિ કા ઉદય હૈ तो ये क्रोध रूप वहां, जैसे शरीर के परमाणु उष्ण होते हैं तो अपने को उष्ण लगता है, अरे मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं गर्म हुआ ऐसा लगता है ना, और उसका उपचार भी चालू कर देता है। ऐसे ही प्रकृति स्वभाव जो उदय रूप कर्म है, वहां वो उदय रूप का स्वभाव क्या है, क्रोध है। अभी हम क्रोध की बात करेंगे, तो इसको क्या फील हो रहा है, मैं क्रोधी हो गया। तो ये जड़ और मैं स्वयं दोनों एक ही क्षेत्र में है, और इतने मिले जुले जैसे है कि ये अपने में ही, उसके कारण जीव में ही और आग की परिणति चल रही है। तो ये उस निमित्त से उसमें, परंतु ये स्वभाव जड़ का है। तो जीव ऐसा भेद ज्ञान नहीं करता है, यानी वहां मैं स्वयं अरूपी हूं, ज्ञान स्वभावी हूं, उसी जगह में कर्म है, रूपी है, और ये सारे ये जो जड़ कर्म का जो उदय रूप स्वभाव है वो उसका है, इससे इसका भेद ज्ञान नहीं चलता है। और अपने को ही मैं राग रूप हो गया, द्वेष रूप हो गया, मैंने भोग भोक्ता में हो गया, ऐसे इसकी मान्यता चल रही है। तो इस तरह से हम उसको देखते हैं, तो इसमें भेद ज्ञान करना है। ये प्रकृति का स्वभाव बारंबार जो कह रहे हैं यहाँ पर, पर्याय का स्वभाव नहीं कहते हूँ, वहाँ पर्याय है और वो पर्याय चल रही है, विभाव है। तो विभाव यानी वो अनियत स्वभाव कहेंगे उसको, तो कहे स्वभाव यानी वो जीव का स्वभाव नहीं कहना है। हाँ, पर्याय भी जीव की है, परंतु वहाँ जो हो रही परिणति वो विभाव भाव है, कर्म के निमित्त से हो रही है, वो प्रकृति का स्वभाव में डाल दिया है उसको, तो बिल्कुल ऐसा ही है।
प्रकृति यानी कर्मों के स्वभाव,
कर्मों का उदय रूप स्वभाव है।
देखो, आत्मा में जो पर्याय है, उस पर्याय का या आत्मा का परिणमन करना ये स्वभाव है। अब वहाँ विभाव रूप परिणमन होवे या स्वभाव रूप परिणमन होवे, वो तत्समय की योग्यता के अनुसार है। यानी पर्याय का स्वभाव परिणमन करना, और परिणमन करना यह जीव का स्वभाव, ऐसा लेना। अब वो सम्यक या मिथ्या या स्वभाव या विभाव रूप परिणमन, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। परिणमन करना स्वभाव है, क्योंकि सिद्ध दशा आने पर भी परिणमन कहाँ रुका है। वो नई की भाषा है,
नई की बात अलग है, नई की बात अलग।
हाँ, उसको आत्मा कर्तृत्व नहीं की अपेक्षा से करता है, ऐसा बताए विचार उस टाइप के चल रहे ना।
यानी जो परिणमन है वो आत्मा का है, इतनी बात वहां बतानी है। हाँ, नए तो समय दृष्टि के ही होते हैं,
लेकिन वो आत्मा का स्वभाव नहीं है ना।
यहाँ जो स्वभाव की बात है वो त्रिकाली कायम रहने वाले स्वभाव की बात चल रही है। हाँ, देखो 316 नंबर की गाथा हम पढ़ेंगे। अन्नानि कम्म फलम् पयडि सहावट्टियो दुवे देई, नानि पुण कम्म फलम् जानै उदियम् न वेदेई, अज्ञानि कर्म फलम् प्रकृति स्वभावस्थितस्तु वेदयते, ज्ञानी पुनः कर्म फलम् जानाति उदितम् न वेदयते, अज्ञानी वेदे कर्म फल प्रकृति स्वभावे स्थिर रहि, ने ज्ञानी तो जाने उदय गत कर्म फल वेदे नहीं, अज्ञानी वेदे कर्म फल प्रकृति स्वभावे स्थिर रहि, ने ज्ञानी तो जाने उदय गत कर्म फल वेदे नहीं। गाथा का अर्थ देखते हैं। अज्ञानी इतले अज्ञानी, प्रकृति स्वभाव स्थित तू, क्या कर रहा है, वो प्रकृति के स्वभाव में स्थित है, यानी क्या है, प्रकृति का जो स्वभाव है वो अपना ही मान रहा है। प्रकृति ना स्वभाव में स्थित रहे हो तको, अभी हमने बात की ना, जीव तो अरूपी है और ज्ञान स्वभावी है, और वहीं पर द्रव्य कर्म स्कंध पड़े हैं और उसके प्रकृति के उदय में अनेक बातें बनती है, राग आदि भी। वो पहले तो राग प्रकृति का स्वभाव कहा, अभी हम कर्म प्रकृति के फल की बात कर रहे हैं। तो वहां तो उसके उदय रूप जो कोई कार्य बनता है वो कर्म का है, परंतु अज्ञानी उसको एकमेक मानता है अपने से। ज्ञान का स्वभाव तो जानना है, जैसे पानी में कोई अन्य रंग के कोई हम परमाणु उसमें या पार्टिकल्स मिक्स कर देते तो पानी का कलर लाल पीला हो जाता है, बदल जाता है। तो वो अन्य उसमें जो हमने कोई पोटेशियम डाला जो कुछ है,
हाँ हम गाथार्थ को पढ़ेंगे, क्योंकि आपका जो उदाहरण है वो तो मैं नहीं जानता हूँ आप क्या बताना चाहते थे। तो गाथार्थ में कह रहे अज्ञानी अज्ञानी एटले अज्ञानी प्रकृति स्वभाव स्थित हतु, प्रकृति ना स्वभाव में स्थित रहो तको कर्म फलम, कर्म फल ने वेदयते वेदे छे भोगवे छे। आप बोलेंगे
देखो हम अभी उदाहरण देख रहे थे ना, काय का देख,
पोटेशियम परमैंगनेट।
हाँ, पानी में कोई कलर यानी रंग डाला जैसे पोटेशियम परमैंगनेट डाला तो पानी कैसा हुआ, वो पूरा वायलेट से जामुन कलर का हो गया। तो ये जो रंग है वर्ण जो है वो तो पोटेशियम परमैंगनेट का है, पानी का तो नहीं, पानी तो कलरलेस हम कहेंगे अभी यहाँ पर। तो वैसे परमाणु है तो उसको भी वर्ण है हो, परंतु अभी समझाना है ना हमें। तो ये उससे भिन्न है, पानी का स्वभाव है भिन्न है, और ये जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो स्वभाव उसका जो वर्ण है वो भिन्न है, परंतु एक में एक जैसे दिख रहे हैं। तो पानी वायलेट नहीं हुआ है, कहेंगे भी हम पानी वायलेट हुआ है, परंतु वो जो रंग है वो अन्य पदार्थ का है, पानी का पदार्थ अलग है। ये तो उदाहरण है। स्फटिक का भी यहाँ उदाहरण बहुत बार देते हैं, स्फटिक का स्वभाव तो निर्मल है, परंतु वो स्फटिक के अंदर तो कुछ पार्टिकल्स नहीं, परंतु उसके साइड में भी कुछ रख दो, उसके बाजू में बगल में, तो पूरी उसकी झाँ स्फटिक में आ जाती है। तो वो कलर वो वर्ण किसका है, तो कोई हमने लाल फूल रख दिया है और पूरा स्फटिक लाल दिख रहा है, स्फटिक परिणमित हो गया है उस समय लाल रूप, वो लाल जो झाए है वो है तो स्फटिक की, परंतु वहां वो फूल रखा है तभी वो लाल रूप हुआ है, वो अपनी योग्यता से हुआ है, फिर भी उसका स्वभाव कैसा है तो निर्मल है। ऐसे यहाँ ज्ञान का स्वभाव तो निर्मल है, जीव का स्वभाव तो निर्मल है, कर्म प्रकृति के उदय में जो कोई बातें बनती है, शुभाशुभ राग भी होते हैं या कर्म के अन्य भी जो कोई फल मिलते हैं, तो वो तो ज्ञान ने जाने हैं, उसी प्रदेशों में वो कर्म भी है और उसका फल भी वो उसको ख्याल में आ जाता है, परंतु उसके साथ वो अज्ञानी एकमेक अपने को मान लेता है, इसलिए प्रकृति स्वभाव में स्थित कहा उसको। भेद ज्ञान उसको नहीं है, ये मूल बात है। तो अज्ञानी प्रकृति ना स्वभाव में स्थित रहो थको कर्मफलम, कर्मफल ने वेदयते एटले वेदे छे ने भोगवे छे। पुनः ज्ञानी अने ज्ञानी तो उदितम कर्मफलम, उदित ने उदय में जो आ रहा है, उदय में आवेला कर्मफल ने जानाती जाने छे न वेदयते, वेद तो नथी। क्यों नहीं, उसको भी वो वेदन तो हो रहा है ना, नहीं वो जान रहा है, क्यों, उसको वो भेद ज्ञान चल रहा है, ये कर्म का फल है और जानने वाला मैं भिन्न हूँ, ऐसे उसको वो परिणति में भी है, ज्ञान में भी है, श्रद्धा में भी, सब चल रहा है उसका। अब टीका, अज्ञानी शुद्ध आत्मा ना ज्ञान ना अभाव ने लीधे, कहा ना शुद्ध आत्मा का ज्ञान का अभाव है, अपना शुद्ध स्वभाव कैसा है इसका उसे पता नहीं है। स्वपरना एकत्व ज्ञान थी, उसको ऐसा ही ज्ञान हो रहा है कि मैं और ये पर जो रागादि है, कर्म का फल जो है वो मेरा ही है, मैं ही उस रूप हुआ हूँ, ऐसा वो मानता है, ऐसा जानता है, पहले एकत्वपना का ज्ञान लिया। स्वपरना एकत्व दर्शन थी, उसकी श्रद्धा भी ऐसी है, वो उसको पर मान ही रहे ने, वो अपना ही मान रहा है, उस रूप ही मैं हूं ऐसा वो मानता है। अने स्व परनी एकत्व परिणति थी, ये मेरी ही परिणति है ऐसा उसको भासित हो रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, प्रकृति ना स्वभाव में स्थित हुआ थी, यानी मैं स्वयं शुद्ध आत्मा हूं और ये प्रकृति भिन्न है ऐसा उसको ना ज्ञान है ना श्रद्धा है ना परिणति है, इसलिए वो प्रकृति के स्वभाव में स्थित है। अने तेनाथी प्रकृति ना स्वभाव ने पण हूं पणे अनुभव तो थको, प्रकृति का स्वभाव ही मैं हूं, उसमें मैं पना की बुद्धि हो रही है, हूं पना ने अनुभव तो है, उसमें मैं पना की उसको बुद्धि हो रही है। अर्थात प्रकृति ने प्रकृति ना स्वभाव में स्वभाव ने पण आ हूं छू एम अनुभव तो थको, कर्म फल ने वेदे छे भोगवे छे, यानी प्रकृति का जो स्वभाव है यही मैं हूं ऐसा उसका वेदन चल रहा है, उससे उसी का भोगना चल रहा है। अने ज्ञानी तो यहाँ भोगने की बात है ना, पहले तो वो भोगता नहीं ये सिद्ध कर रहे, पहले करता नहीं वो सिद्ध किया था, पहले तो मैं ही शुभाशुभाव करता हूँ करता पने की बात वहां सिद्ध की, यहाँ भोगता पने की बात हो रही है। तो कर्म फल ने वेदे छे भोगवे, अने ज्ञानी तो शुद्ध आत्मा ना ज्ञान ना सद्भाव ने लीधे, शुद्ध आत्मा के ज्ञान है उसको और उसके कारण स्वपरना विभाग ज्ञान थी, यानी भेद ज्ञान थी, अपना ज्ञान अपना लक्षण से उसने स्व को भी जाना है और पर के लक्षण से पर को भी भिन्न उसने निश्चित किया है, तो स्व पर के विभाग का उसको ज्ञान है, भेद ज्ञान है। स्वपरना विभाग दर्शन थी, उसकी श्रद्धा भी ऐसे क्योंकि स्वानुभव पूर्वक उसने वैसा श्रद्धान भी किया है। अने स्वपरनी विभाग परिणति, मेरी परिणति भिन्न है और ये रागादि की परिणति भिन्न है ऐसा उसको परिणति का भी भिन्नता का भान चल रहा है। प्रकृति ना स्वभाव थी निवर्तेलो, निवर्तना है वहां से हट जाना, यानी प्रकृति के स्वभाव में जो स्थित था अज्ञानी, ज्ञानी को ऐसा भेद ज्ञान ऐसी श्रद्धा ऐसी परिणति भी अपनी भिन्न हो गई है, इसलिए उसको कहते हैं प्रकृति ना स्वभाव थी निवर्तेलो, एटले खसी गयेलो छूटी गयेलो हुआ थी, शुद्ध आत्मा ना स्वभाव ने एक नेज हूँ पने अनुभव तो थको, उसकी मैंपना की मान्यता मैंपना का ज्ञान परिणति किसमें, मात्र स्व में, स्व को ही वो स्वपना से अनुभव करता है। तो शुद्ध आत्मा ना स्वभाव ने एक नेज, जो लिखा है ना, शुद्ध आत्मा को भी अनुभव होता है कि रागादि को भी अनुभव होता है ऐसी बात नहीं कही, शुद्ध आत्मा ना स्वभाव ने ज एक ने ज हूं पण अनुभव तो थको, उदित कर्मफल ने, जो कर्मफल उसका उदय रूप हो रहा है उसको, तेना ज्ञेय मात्र पणा ने लीधे जाने ज छे, ये जानतो नथी ये बात नहीं है, कर्मफल जो उदय रूप कर्म है उसका जो फल है उसके जो कुछ राग आदि है उसको मात्र जानता है, जाने छे ने वो अपने में मिलाता नहीं, अपने रूप जानता नहीं, अपने रूप मानता नहीं, उसकी परिणति को अपने परिणति में मिलाता नहीं है, इसलिए कहते ज्ञेय मात्र पनाने लीधे जाने छे, क्योंकि वो ज्ञेय भी है ना, तो ज्ञान तो सबको जानेगा, उसको पर है ये निश्चित किया है उसने तो पर को भी जानेगा, तो ये उसका ज्ञेय मात्र है, उसको जानता तो है, परंतु तेनु हूँ पने अनुभववावु अशक्य छे, अशक्य हुआ थी तेने वेद तो नथी, यानी उसमें मैं पना की उसकी मान्यता है ही नहीं है, ऐसा अनुभव ही नहीं है, इसलिए वो उसको वेदन करता ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि वो भिन्न है ना। भावार्थ, अज्ञानी ने तो शुद्ध आत्मानु ज्ञान नथी, तेथी जे कर्म उदय में आवे तेनेज ते पोता रूप जानी ने भोगवे छे, अने ज्ञानी ने शुद्ध आत्मानो अनुभव थई गयो छे तेथी ते प्रकृति ना उदय ने पोतानो स्वभाव नहीं जानतो थको, तेनो ज्ञाता ज रहे छे भोगता थतो नथी, क्या करे अभी हमारे कर्म का ऐसा उदय चल रहा है ऐसी अरे तो उदय तो कर्म में हो रहा है, वो फल तो कर्म का कर्म में है, मेरा उसमें क्या है, मैं तो जान रहा हूं, तो कितनी निराकुलता ज्ञानी के चलती है ना। अभी कलश तो हम बाद में देखेंगे, पहले प्रवचन।
हाँ। यहाँ कह रहे हैं अवे आ अर्थ ने गाथा में कहे छे, तो कया अर्थ ने गाथा में कहे छे कि जेवी रीते आत्मा अकर्ता छे एवी रीते ज अभोक्ता छे, ए अर्थ ने हवे आ गाथा में कहे छे। टीका ऊपर नु प्रवचन। अज्ञानी शुद्ध आत्मा ना ज्ञान ना अभाव ने लीधे, एक अज्ञानी की कौन सी भूल हो गई है कि जो अपना स्वभाव है, स्वरूप है, शुद्ध आत्मा है, उस शुद्ध आत्मा के स्वभाव का ज्ञान नहीं है, तो उस ज्ञान के अभाव ना कारणे क्या हुआ? स्वपरना एकत्व ज्ञान थी, स्वपरना एकत्व दर्शन थी, अने स्वपरनी एकत्व परिणति थी। यहाँ तीन बातें बताई है, तो ये तीन बातें किसको इंडिकेट करती है? फिर से ये आपने नए शब्द निकाले। हाँ देखो भाई, हामड़ो। हाँ बहुत अच्छा। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, बहुत अच्छा। तो आपने क्या बताया? कुज्ञान, कुदर्शन, ऐसा लिखा है क्या इसमें? स्वपर्णा एकत्व ज्ञान थी, एकत्व परिणति थी। चलो आगे लिखा है वो, देखो क्या कह रहे हैं। स्वपर्णा एकत्व ज्ञान थी, स्वपर्णा एकत्व दर्शन थी, अने स्वपर्णा एकत्व परिणति थी। क्या हुई इसके कारण? क्या हो गया? प्रकृति ना स्वभाव में स्थित हुआ थी, प्रकृति ना स्वभाव ने पन हूँ पने अनुभव तो थको, अर्थात प्रकृति ना स्वभाव ने पन आ हूँ छू एम अनुभव तो थको, कर्म फल ने वेदे छे। ये कर्म फल याने क्या हो रहा है यहाँ? हाँ देखो देखो, एक ये कर्म के उदय के कारण उस उदय में मैं सुखी मैं दुखी ऐसा अनुभव करता है, वह कर्म फल का वेदन कर रहा है। हाँ वो भोगवे छे ना, भोगने की बात है ना, तो ऐसा मानते हैं कि मेरे पास आज कौन सा वो ओपेल गाड़ी आया क्या, और कौन सा होता है अमिताभ बच्चन को मिला ना कुछ 5-25 करोड़, कौन सी? अच्छा बेटले, जो भी होगी भाई, अपने को कहा सुनने को भी मालूम नहीं तो बैठने को कहा आना है। हाँ यानी उसमें मैं सुखी और उसको मिला, मुझे नहीं मिला, मेरा नसीब खोटा, तो उसको हम उसमें दुखी ऐसा अनुभव करना, ये कर्म फल वेदन है। हाँ कर्म फल ने वेदे छे भोगवे छे। आत्मा चिदानंद घन प्रभु एकलो आनंद नु दल छे, आहा हा ज्ञानानंद रस नो समुद्र प्रभु आत्मा छे। आवा पोताना शुद्ध स्वरूप ने नहीं ओळखवाती तेने अनादिती स्वरूप नु अज्ञान छे। तो टेवाई गयेलो छे, एने कई एमां खोटू लागतो नथी। तेथी अज्ञानवश रागते हूँ छू एम मानतो थको, ते स्वपरना एकत्व ज्ञान थी, स्वपरना एकत्व दर्शन थी, अने स्वपरनी एकत्व परिणति थी, प्रकृति ना स्वभाव मा स्थित थयो छे। एटले उस रूप में हूँ ऐसा ही मान रहा है, जान रहा है और क्रिया भी कर रहा है उस तरफ से। भाई आ पुण्य पाप ना जे भाव थाय छे ते प्रकृति नो स्वभाव छे। आहा हा प्रकृति ना स्वभाव में उभेलो ते प्रकृति ना स्वभाव ने हूँ पने अनुभव तो थको, कर्म फल ने वेदे छे अने भोगवे छे। बात ख्याल में? अभी कर्म का जो कोई उदय चल रहा है और उसके अनुसार हम उसमें दुखी हो रहे हैं या सुखी हो रहे हैं, और उस रूप ही मैं सुखी हूँ और दुखी हूँ ऐसा जो अनुभवन चल रहा है, वेदन चल रहा है, भोगवटा चल रहा है, वो कहते कर्म फल ने वेदे छे। अरे भाई 84 लाख ना अवतार नो घोरा थी घोर दुखो थी भरेलो आ भवसिंधु अपार छे। ये भवसिंधु यानी जन्म मरण रूपी जो कुछ बातें चल रही है वो कैसा है जिसका कोई पार नहीं है, और उसमें क्या है साहब, मगरमच्छ है? अरे नहीं, घोरा थी घोर दुख है। मगरमच्छ वगैरह तो होंगे तो जाने दो ना, उसके क्या लेना देना है। क्या कहते हैं, आ 84 लाख ना अवतार नो घोरा थी घोर, यानी बार बार जन्म मरण जो हो रहा है वो अत्यंत घोर दुख है, और इन दुखों से भरा हुआ यह संसार समुद्र है। भव सिंधु असंख्य योजन ऊपर असंख्य योजन नीचे, एम एने उपजवाना स्थान अनंत छे। ये क्या क्या बताना चाहते हैं, असंख्य योजन ऊपर अने असंख्य योजन नीचे। हाँ जय बेन, हाँ असंख्य योजन ऊपर और असंख्य योजन नीचे, एने जन्मवाना स्थान उपजवाना एटले जन्मवाना स्थान अनंत छे, एटले स्थूलपने असंख्य छे। हाँ प्रेरणा बेन आप बताएंगे, ये असंख्य योजन ऊपर और नीचे ये बात मुझे जाननी है। हाँ हाँ तो ये कितना डिस्टेंस है, हाँ डॉक्टर आप बताओ। हाँ बहुत अच्छा, हाँ 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 बरोबर। अभी हम मध्य लोक में आज बैठे हैं तो यहाँ ऊपर और नीचे, वैसे तो ये खाली एक हाइट बता रहे, यानी इनको क्या बताना है, देखो देखो कह रहे हैं कि असंख्य योजन ऊपर अने असंख्य योजन नीचे, एम तेने उपजवाना स्थान अनंत छे, स्थूलपने असंख्य छे, अने एति स्थूलपने 84 लाख योनि छे। यानी ये जीव, अभी हम थोड़ा सा पहले की याद करेंगे तो क्षेत्र परावर्तन करता है, तो लोकाकाश का एक भी प्रदेश कहो या क्षेत्र कहो ऐसा बाकी इस जीव ने छोड़ा नहीं है कि जहां उसने जन्म नहीं लिया है। तो उसको स्थूल रूप से कहें असंख्य योजन ऊपर असंख्य योजन नीचे, और आप लिटरली उसका अर्थ निकाले तो 7 योजन ऊपर 7 योजन नीचे, और ऐसा अंदर भी 7 योजन है ना अभी। तो क्या कहा, ये 7 योजन नहीं 7 राजू, एक राजू में तो कितने योजन होंगे कोई हिसाब नहीं उसके, असंख्य असंख्य। हाँ जी, उपजवाना स्थान अनंत छे ये बताया। हाँ असंख्य योजन, योजन की बात चल रही ना तो उसके लिए वैसा कहा। हाँ उपजवाना स्थान,
स्थान यानी क्षेत्र नहीं लेना।
हाँ देखो देखो स्थूलपने असंख्य छे, यानी वही ये देखो असंख्य योजन ऊपर नीचे उपजवाना स्थान छे, स्थूलपने उपजवाना स्थान असंख्य छे, अने एती स्थूलपने 84 लाख योनि छे। हाँ जी हाँ जी
देखो हाँ, अनंत है जो निगोद की स्थान, निगोद की अपेक्षा उपजने के स्थान कितने हैं तो अनंत है, अनंत निगोद है, अनंत उसी में घटित हो गया। अब देह की अपेक्षा कहेंगे प्रत्येक शरीरी वाले या कोई भी अन्य भी तो असंख्य है, और योनि की अपेक्षा बात करेंगे तो 84 लाख योनि है। अभी प्रत्येक की कितनी कितनी वो सब पूरा डिटेल है इसमें। अनंत प्रदेश में नहीं गिनना उसको, अनंत
स्थान लेना है अलग अलग आकाश में,
निगोद के एक एक जीव की अपेक्षा से उसके एक एक स्थान गिनेंगे तो ये अनंत हो जाएंगे, परंतु देह तो एक ही है ना, एक देह में अनंत जीव उत्पन्न होते हैं। या निगोद के भी अगर छोड़ देंगे, अन्य भी वनस्पति अन्य एक इंद्रिय अन्य द्विंद्रिय आदि सभी है, वो हर एक अपने अपने असंख्यात जीव होते उसके असंख्यात स्थान कहेंगे। मनुष्य कितने संख्यात है कि असंख्यात है, हाँ लक्ष्मीबेन, मनुष्य संख्या थे कि असंख्या थे? संख्या थे, आप क्या कहते हैं? हाँ बोलो,
आप क्या कहते हैं बहन?
हाँ
जोर से बोलना,
बराबर है, आप बोलो।
बाजू वाली भी नहीं सुन रही है।
असंख्या, देखो अपर्याप्त भी मनुष्य होते हैं ना, समूर्चन। हाँ मनुष्य कहेंगे तो दोनों आ गए उसमें। हाँ तो पर्याप्त मनुष्य संख्यात है, परंतु मनुष्य कितने हैं, मनुष्य गति वाले जीव कितने हैं, तो असंख्यात हो जाएगा। समूर्चन मनुष्य, हाँ बाकी समूर्चनों की बात नहीं, वो तिर्यंच में चले जाएंगे, समूर्चन मनुष्यों की बात है।
हाँ देखो, यहाँ अभी आपका जो प्रश्न है ना, यहाँ उत्तर आया। देखो, स्व परनी एकत्व बुद्धि रूप मिथ्यात्व दशाना कारणे एने लसन डुंगरी कीड़ा कागड़ा ने नरक निगोद इत्यादि ना अनंत दुखमय भव करिया छे। शू थाय भाई, मिथ्यात्व नु फल आवु बहु आकरु छे बापू। क्षणिक विकारनी शुभाशुभ रागनी दशा ने निज स्वरूप मानी ले, आज मिथ्यात्व छे ने, तो एनु फल बहु आकरु छे प्रभु। अरे भाई, मिथ्यात्व नु फल शास्त्र मा निगोद कयु छे तेने खबर नथी, पर नरकना दुख करता निगोदनु दुख अनंत गणु छे। निगोदनो जीव शक्तिए तो पूर्ण ज्ञानानंद गण छे, पन तेनी ज्ञाननी वर्तमान पर्याय मा अक्षरना अनंतमा भाग जेटलू अल्प ज्ञान होय छे। अब ये अक्षर जो है वह अ ब क ऐसा हम बोलते, वो अक्षर नहीं। अब जो अक्षर ज्ञान जिसको कहा है, वो पार्टी आप देवलाली में देखना, उसकी बात वहां पर आएगी। ये भी ज्ञान के प्रकार जो है, शुद्ध ज्ञान के जो अनेक भेद है, उसमें भी एक अक्षर ज्ञान नाम का ज्ञान है, और उसका अनंतवा भाग जो है उसको पर्याय ज्ञान कहते हैं, और वह पर्याय ज्ञान सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्तक निगोदिया जीव के जगन्य मोस्ट, मतलब मिनिमम मोस्ट उसके होता है। तो ये वो कितना है, तो अक्षर का अनंत वा भाग। तो क्या कहते हैं, देखो निगो सेकंड लाइन, निगोदनो जीव शक्ति है तो पूर्ण केवो छे, सिद्ध समान ज्ञानानंद गण छे, पन तेनी ज्ञाननी वर्तमान पर्याय मा अक्षर ना अनंतमा भाग जेटलू अल्प ज्ञान होई छे। और वह जो मिनिमम मोस्ट ज्ञान है, उस ज्ञान के अगर हम अविभाग प्रतिच्छेद गिनेंगे तो वे भी अनंत है। तो अभी हमारा ज्ञान कितना बड़ा है, देखो देखो, हाँ अच्छा लगता है ना, अनंत अनंत अविभाग प्रतिच्छेद है। सो कि तुम आहा हा केवी हीन दशा, अने एने जे पारावार दुखनु वेदन होय तेने केम कहिए, होते अंदर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान छे। तो इसको आपको लगता है उसको अगर फीलिंग ही नहीं होती हो, मतलब कितना ज्ञान ही नहीं है ना, तो उसको क्या पता लगता होगा। तो ऐसा मानना हो गया कि कोई जीव कोमा में गया है तो अनंत सुखी होना चाहिए, क्यों? उसको तो पता ही नहीं, बहान नहीं रहे तो सुखी होगा या दुखी होगा। हाँ भाई, जो कोमा में गया जीव है ना, तुम्हारे हमारे जैसा मनुष्य कोमा में गया है, तो सुखी है या दुखी है? वो दुख का ही वेदन कर रहा है, उसको कोई इतना, मतलब जिसको हम कहते ना बेहोश हो गया है कि दुख क्या है और सुख क्या है पता ही नहीं है, तो वो आत्मा का अनुभव करता होगा कि नहीं? तो दुखी है ना पक्का। तो ऐसा लगता है कि वो निगोदिया जीव का ज्ञान इतना सा, और उसको क्या पता लगता है? अरे वो अनंत प्रतिकूलता है, उसका ज्ञान ही नहीं हो सकता है उसको। जैसे ये बेहोश आदमी को नहीं समझ में आता है, वैसे इसको भी क्या कह रहे, देखो, अने एने जे पारावार दुखनु वेदन होय छे तेने केम कहिए। आहा हा, पोते अंदर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान छे, आवा वास्तविक निज स्वरूप ने नहीं मानता, हूँ राग नो करनारो रागी छू, राग नो भोगोनारो भोगता छू, एम जे पोताने आड़ आपे छे, पोतानी छती चीज ने अछती करी दे छे, ते तेना फळमां निगोदना स्थानमां उपजे छे। पोताने आड़ आपे छे ने उस आजे नहीं नहीं आरोप करता है उसके ऊपर आड़ आपे छे कि मैं इसका राग का करता हूँ ऐसा ऐसा। और दूसरा क्या कह रहे, देखो पोतानी छती चीज यानी जो अपनी स्वयं विद्यमान वस्तु है जो सत स्वरूप है इन्हें अछति करी दे छे, यानी वो है नहीं ऐसा बता रहे। अने तेना फलमा, अभी जिसने अपनी सत्ता ही नहीं जानी है, मान लो अभी ये बात हमको समझनी है, तो ऐसा समझेंगे कि किसी व्यक्ति के पिताजी के पास करोड़ों का धन था और उसको पता ही नहीं है कि मेरे पिताजी के पास इतना धन है, छोटा था, बाप मर गया तो उसको मालूम नहीं कि इतना पैसा है, कहाँ रखा है, क्या रखा है, तो वो क्या हो जाएगा? स्वयं करोड़पति होते हुए भी उसने माना ही नहीं ना अपने को, क्षति चीज ने अक्षति करी नाखी। वैसा स्वयं स्वतंत्र है, स्व का स्वयं परिणमन कर सकता है, एकदम मतलब जिसको हम कहेंगे ना कि केवल ज्ञान स्वरूप अपना स्वभाव है, उसको जानता ही नहीं है। और मैं तो क्या भाई, ये कर्म जो है ना उसका खिलौना हूँ, वो जैसा मेरे को नचावे वैसा मैं नाचता हूँ, क्या करूँ। तो ये क्षति चीज ने अक्षति करी ना की, ये बात बता रहे। देखो पहले क्या बताया कि निज स्वरूप ने नहीं मानता हूँ, रागनो करनारो रागी छू, रागनो भोगनारो भोगता छू, एम पोताने आड़ आपे छे, अने पोतानी क्षति चीज ने अक्षति करी दे छे। ते अरे ऐसा जो कोई पराक्रम करता है तो उसको फल कौन सा मिलता है? तो तेना फळमा निगोदना स्थानमा उपजे छे, हूँ राग नो करता भोगता छू एम माननार, पोतानी हय्याती ने यानी पोतानी सत्ता ने शुद्ध चैतन्य सत्ता ने मानतो नथी, अने जे पोतानी हय्याती ने मानतो नथी ने एना फळमा निगोदमा उपजे छे, ज्यां दुनियाना लोको पण एनी हय्याती ने मानवा तैयार न थाय। शू थाय? आमा कोई नु कोई चाले एम नथी, काई चाले एवो नथी। देखो मैंने बताया ना, मैंने दो तीन दिन क्या एक हफ्ते पहले दो हफ्ते पहले बताया कि ये मोना का जो बेटा है ना, तो उसको पोटैटो का ऑटोबायोग्राफी क्या है, पोटैटो के बारे में लिखने को बोला, तो उसने इसमें लिखा कि देर आर सो मेनी इंसेक्ट्स इन दैट एंड आई लाइक पोटैटो वेरी मच, जो कुछ लिखा होगा। तो उसकी टीचर बुला दिए, मोना को बुला, ये क्या लिखा है, उसको इसमें पोटैटो हैज गॉट मेनी आईज लिखना है यानी वहां पर कोई निगोदिया जीव है ये मानने के लिए तैयार नहीं, बोल रहे ना यहाँ। तो उस बिचारी को क्या मालूम, बिचारी हो और हम जानते हुए खाते हुए अविचारी क्या कहा देखो देखो ये कह रहे हैं कि दुनिया ना लोगो पर एने हयाती ने एने सत्ता ने मानवा तैयार न होए, आमा कोई नू कहीं चाले एम नथी, एटले आपणे बंद करी दीए। जावानी के ज्ञान तय सूजे लो कालो सोवणी म सकण मो सदा गीत हो। नलिन में